नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। फिलीपीन के एक सरकारी अटॉर्नी की उसकी फिलाडेल्फिया यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जॉन अल्बर्ट लाइलो अपनी मां के साथ फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शनिवार तड़के करीब 4:10 पर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पास एक लाल बत्ती पर उनकी ऊबर रुकी। तभी पीछे से एक काली गाड़ी उनके पास आकर रुक गई और उनमें से उनकी कार पर कई गोलियां चलाई गई। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि लाइलो के सिर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमले के कारण का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि हमले में लाइलो उनकी मां या ओबर चालक में से किसे निशाना बनाया था। फिलाडेल्फिया के KYW टीवी के अनुसार फिलीपीन के महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि लाइलो फिलीपीन सरकार के अटॉर्नी थे। ऊबर चालक और अटॉर्नी की मां के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ताइवान में सोमवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान जानमाल की किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। ताइवान के सेंट्रल वेदर ब्यूरो ने बताया कि सुबह 9:05 पर हुलैन काउंटी में भूकंप आया। उसका केंद्र 6.8 गहराई में था। चीन के सरकारी प्रसारक CCTV के अनुसार भूकंप के झटके उत्तरी ताइपे सहित लगभग पूरे द्वीप में महसूस किए गए। ताइवान जल डमरू मध्य में भी इसका असर दिखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन को रविवार को संसदीय चुनाव के अंतिम दौर में सबसे अधिक सीटें मिली, लेकिन इसने अपना संसदीय बहुमत खो दिया। ये जानकारी अनुमानों से मिली है। आंशिक परिणामों पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि मैक्रों के उम्मीदवार 200 से 250 सीटों पर विजयी रहेंगे। सीटों की ये संख्या फ्रांस की संसद की सबसे शक्तिशाली सदन नेशनल असेंबली में सीधे बहुमत के लिए आवश्यक 289 सीटों से बहुत कम है। ये स्थिति फ्रांस में असामान्य है। वास्तविक परिणाम यदि अनुमानों के अनुरूप रहे तो इससे मैक्रों को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। एक नए गठबंधन के लगभग 150 से 200 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनने का अनुमान है। धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली को संभावित रूप से 80 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है, जिसके पास पहले 8 सीटें थी। भारत में किसी विमानन कंपनी के लिए लाभ कमाना सरल नहीं है और किराए की सीमा तथा विमान के ईंधन पर लगने वाले कर जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये बात अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कही। IATA के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष फिलिप गोह ने IATA की 78वीं वार्षिक बैठक पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या विस्तार और एयर इंडिया का टाटा समूह द्वारा विलय कर देना चाहिए, गोह ने कहा, दोनों पूर्ण सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, विस्तार छोटी है और हालांकि वो 5-6 से व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घाटा सह रहे हैं। भारत में लाभ कमाना सरल नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। गोह ने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एयर इंडिया और विस्तार के विलय को लेकर बातचीत चल रही होगी। भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उड़ान की कीमतें विमानन कंपनियों को तय कर देना चाहिए और जिस तरह इस पर नियंत्रण रखा जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में अम्हारा समुदाय पर हुए हमले में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने यह जानकारी दी और विद्रोही समूह को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि समूह ने इससे इनकार किया है। ये अफ्रीका में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े देश में हाल ही में किसी समुदाय पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है। शनिवार को हुए हमले में बाल बाल बचे गिम्बी काउंटी के एक निवासी अब्दुल सईद ताहिर ने बताया, मैंने 230 शव गिने। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा हमला नहीं देखा। उन्होंने कहा, हम इन्हें दफना रहे हैं तथा और शव एकत्र कर रहे हैं। सेना पहुंच चुकी है, लेकिन हमें डर है कि उनके जाने के बाद हमला फिर से हो सकता है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी शम्बेल ने कहा कि स्थानीय अम्हारा समुदाय के लोगों को अगले हमले से पहले कहीं और स्थानांतरित करने की ज़रूरत है। इन दोनों चश्मदीदों ने हमले के लिए ओरोमो लिबरेशन आर्मी यानी OLA संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। और ओमिया की क्षेत्रीय सरकार ने भी हमले के लिए ओएलए पर आरोप लगाया है, लेकिन समूह के प्रवक्ता ओडा तरबी ने इन आरोपों का खंडन किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की FIH प्रो लीग खिताब जीतने की उम्मीद रविवार को यहां दो चरण के मुकाबले के दूसरे मैच में नीदरलैंड के खिलाफ 1-2 की हार के साथ टूट गई। भारत को शनिवार को पहले मैच में भी नीदरलैंड के खिलाफ शूटआउट में 1-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जबकि 60 मिनट के नियमित समय के बाद दोनों टीम 1-4 से बराबरी थी। खिताब जीतने की मामूली उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को नीदरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीदरलैंड ने 14 मैच में 35 अंक के साथ पुरुष वर्ग का खिताब जीता, जबकि अभी दो मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।